आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हिंदी, और हम बात करने वाले हैं सार कैसे लिखें। जी हाँ, अपने एक्सपर्ट के साथ हम जानेंगे कि सार लिखने की क्या विधियाँ होती हैं और किस तरीके से उसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका कादियान, एकेडमिक ऑफिसर, एकेडमिक डिपार्टमेंट NIUST। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
जी धन्यवाद।
तो मैम, मैं चाहूँगी हमारी जैसे चर्चा है सार कैसे लिखें, तो आप प्लीज़ शुरू कीजिए।
जी, श्रोताओं और शिक्षार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आप खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे और खूब सारे काम भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सार लेखन, और ये जो पाठ है ये हमारे लेखन कौशल के अंतर्गत आप इसे समझ सकते हैं कि हम अपने लेखन कौशल विकसित करने के लिए हमें बहुत सारी विधियां जो हैं वो सीखनी होती हैं, बहुत सारे बातें हमें जाननी होती हैं, जिससे हम जैसे हम निबंध भी लिखते हैं या हम पत्र लिखते हैं, इसी तरह से सार भी हम लिखते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम सार कैसे लिखें इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपने अपने मित्रों से बात की होगी, अभी हाल ही में भी बात की होगी, शायद सुबह भी बात की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफ़ी देर उनसे बात की होगी, और शायद ऐसा आपके साथ ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपका वह मित्र या आपकी वह सखी थोड़ी जल्दी में हो और वो आपसे कहे कि थोड़ा सा संक्षेप में बताओ, थोड़ा सा इसे बिल्कुल कह सकते हैं कि सटीक रूप में बताओ, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कि शॉर्ट में बताओ। तो ये शॉर्ट में बताना क्या होता है? तो आप उस समय अगर ऐसे आपके मित्र ने कहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसे आधी बात बताएंगे या पूरी बात की मुख्य बातें आप उसे बताएंगे? तो आप आपके मन में वो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब भी इस तरह की आपके सामने कोई स्थिति आती है। या मैं दूसरा उदाहरण दूं कि आपने कोई फिल्म देखी है और आपको वो फिल्म बहुत अच्छी लगी है, आपके घर के किसी और सदस्य ने, परिवार के किसी और सदस्य ने या किसी मित्र ने वो फिल्म नहीं देखी है, और वो आपसे पूछता है कि वो आपसे पूछती है कि इस फिल्म में का जो उसकी जो मुख्य उसका संदेश है या उसका कह सकते हैं कि जो उसकी मुख्य बातें हैं, उसकी मुख्य घटनाएं हैं, वो किस उस पर किस विषय पर आधारित है, और इसे देखने के लिए आप क्या मतलब कहेंगे कि इसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो आप उसे बिल्कुल मुख्य उसकी जो फिल्म के जो मुख्य उसकी घटनाएं हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं आप उसे वह बताते हैं। तो वहाँ भी आपका ये जो सार करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अंतर मन में आपके चलती रहती है। तो इसलिए शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये कोई नया कौशल है जो आज आप सीखने वाले हैं। ये उदाहरण देने का जो मेरा तात्पर्य था, मेरा आशय था कि आप समझ सकें कि ये जो कार्य है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधि है, आप कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते रहते हैं, बस हमें ये पता नहीं होता है कि हम ये इस प्रक्रिया का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात को, बहुत विस्तृत बात को जब हम संक्षेप में, जब हम कम शब्दों में हम लिखते हैं या हम व्यक्त करते हैं, तब वह सार लेखन कहलाता है। तो इस तरह से आपको मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा कि सार लेखन में आज हम क्या करने वाले हैं। तो इस पाठ में जो हमारी चर्चा रहेगी, उस चर्चा के दौरान हम जानेंगे कि सार का अर्थ क्या होता है। अभी हमने इन उदाहरणों के माध्यम से भी समझ लिया है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकता है। एक सामान्य बातचीत में तो उपयोगी है ही, लेकिन औपचारिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ सार लेखन की उपयोगिता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक सार लेखन है और एक भाव पल्लवन है, इसमें अंतर क्या होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। और सार लेखन के अलग अलग रूप होते हैं, तो वो कौन से रूप होते हैं, किन क्षेत्रों में उनका प्रयोग किया जाता है, हम इस पर बात करेंगे। और सार को लिखने की प्रक्रिया क्या है, किन चरणों से गुजरकर हम एक अच्छा सार लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस चर्चा के दौरान आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप बखूबी समझ जाएंगे, आप बखूबी जान जाएंगे कि सही शैली में, उपयुक्त शैली में आप सार लेखन कैसे करें। तो हमने ये अपने उद्देश्य आपके सामने रखे हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सार लेखन का अर्थ क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मित्र का, कि मित्र के पास शायद समय नहीं है, वो किसी और आवश्यक कार्य में व्यस्त है, लेकिन वो आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता है, एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाना चाहता है, तो वो आपको कहता है कि आप इसे संक्षेप में, आप अपनी बात को संक्षेप में बताइए। ये तो एक सामान्य सा उदाहरण हो गया। इसके अलावा हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज सभी के पास इतने कार्य हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, सब लोग काम पर लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर भी काम करना है, घर का भी काम करना है, अपनी नौकरी का भी देखना है, इधर पढ़ाई भी करनी, कितने सारे काम हैं हमारे पास, और ये सारे काम हमें बखूबी करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, हम किसी भी काम को कम नहीं आंक सकते हैं, तो ये सभी काम हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे व्यस्त जीवन में जो सार करने का जो कार्य है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, तभी तो हम अपने समय में बहुत सारे काम कर लेते हैं। अगर हम उतने ही विस्तार से हर काम को, अगर पढ़ाई में भी, अगर हम किसी भी पाठ को अगर हम पढ़ते हैं और उसे पूरे विस्तार से पढ़ने के बाद जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तब भी हम पूरे विस्तार से नहीं पढ़ते हैं, तब हम उसको संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मुख्य बिंदु बनाकर रखते हैं जिससे हम वो पाठ कम समय में अच्छे ढंग से हम इसे याद रख सकें, तो ये भी कहीं ना कहीं सार का ही एक रूप होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कुछ कम उपयोगी जो बातें हैं, कम उपयोगी जो तथ्य हैं, हम उन्हें दरकिनार करके जो उचित हैं और उपयुक्त हैं और बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हम अपनी बातों को कह सकें, अपने भावों को हम व्यक्त कर सकें, उसे हम सार लेखन कहते हैं। तो एक तरह से हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हम अपनी भाषा को, हमें जो भाषा का ज्ञान है, हम उसका उपयोग इस तरह से करें कि हमारे जो समय है, हमारा जो समय है उसकी बचत हो सके। तो ये कब होगा, जब हमारी शैली उस तरह की होगी, जब हम कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा समय भी बचेगा। अब इसको एक और उदाहरण से इस बात को रखते हैं। मान लीजिए कि आप मित्र मंडली में बैठे हैं और वहाँ पर किसी ने आपसे किसी घटना के बारे में कुछ पूछा है कि कल मुझे पता चला कि आपके यहाँ कोई, आपके पड़ोस में कोई दुर्घटना हो गई है, तो क्या हुआ था उसमें। अब किसी व्यक्ति ने, किसी मित्र ने आपसे ये बात पूछी है और आप उसे पूरी कहानी विस्तार से आप बताने लग जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या आपके मित्र मंडली में जो बाकी सभी लोग हैं उस इतनी विस्तार से कही हुई बात को ध्यान से सुनेंगे, मुझे संदेह है। आपको क्या लगता है, क्योंकि हम सभी के पास कहीं ना कहीं समय की कमी रहती है, जानकारी हम पूरी चाहते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमें जानकारी मिले लेकिन सटीक और संक्षिप्त रूप में मिले। तो आपके मित्रों में से बहुत से ऐसे होंगे जो ये बात सोच रहे होंगे कि अरे कब बात कब ख़त्म होगी, क्योंकि वो सीधा सीधा आपसे ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि आप इसे कम शब्दों में बताइए, इससे आपका भी आपको भी दुख होगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि आपके मित्र जो हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि थोड़े से आपका दिल दुखाने की बात कर रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा। तो आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए वो आपसे ऐसा नहीं कहते हैं। वही बात वही घटना अगर आप नपे तुले शब्दों में बहुत ही सटीक रूप से सही भाषा का प्रयोग करते हुए कम शब्दों में आप उसे जब बताते हैं तो सभी लोग आपकी बात सुनेंगे, रुचि से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और कहीं ना कहीं मन ही मन वो इस बात से भी प्रभावित होंगे कि आपको आप में विचारों की कितनी स्पष्टता है, आप अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से कितने संक्षेप में आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संक्षेप में जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो हमारा समय तो बचता ही है, साथ ही एक जो हमारे अभिव्यक्ति है वो भी एक रोचक होती है। और अगर आप फोन पर या किसी और अन्य माध्यम से अगर आप इस तरह से किसी से संपर्क कर रहे हैं, किसी से आप पत्र भी लिख रहे हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि आपके धन भी कम आपके धन की भी बचत होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में सार जो है उसको करने का, उसे लिखने का, उसका प्रयोग करने का बहुत ही लाभ होता है। तो जब हम अपनी बात मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो वहाँ तो हम अपनी बोलना जो कौशल है हमारा वो भी विकसित होता है, मन में वो सार करने की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब वही कार्य हम लिखित रूप में जब हम व्यक्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो सार लेखन बन जाता है। तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो प्रक्रिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में हमारे व्यवहार में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सार लेखन कहाँ उपयोगी हो सकता है। आप औपचारिक क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि मीडिया में सार लेखन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अखबारों में, समाचार पत्रों में जो स्थान है या जो जगह है या पृष्ठों की संख्या है वो बिल्कुल सीमित होती है, उससे अधिक पृष्ठ वे उसमें नहीं जोड़ेंगे। तो उन्हें बहुत सारे समाचार देने हैं उन्हीं सीमित पृष्ठों में, तो किस तरह से वे इतने सारे समाचारों को उन पृष्ठों में समेटेंगे। वो मुख्य जो भी समाचार हैं वे उनका सार करके वहाँ उनका उन्हें मुद्रित करेंगे। तो इस तरह से ये काम मीडिया में किया जाता है और इसी तरह से बहुत बार पुस्तकों का सार भी किया जाता है। ये तो हुआ कि हम साहित्य में इस तरह से सार लेखन का उपयोग करें या हम मीडिया में करें। इसके अलावा आप देखिए कि कितने सारे सरकारी कार्यालय हैं और इन कार्यालयों में बहुत सारे पत्र निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। तो इन पत्रों को जब फाइल पर जब उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है तब उन पत्रों का भी सार किया जाता है। पूरा का पूरा पत्र साथ में उसका यूं का यूं उसे नहीं वहाँ पे उद्धृत किया जाएगा, उस पत्र का सार वहाँ पर लिखा जाता है, बताया जाता है कि इस पत्र में ये बात कही गई है, हमसे ये अपेक्षित है, हमें इस पर ये कार्रवाई करनी है, कृपया हमें इसकी अनुमति दीजिए या इस पर आप हमें आदेश दीजिए, जिस तरह से भी जो भी अपेक्षित है वो वहाँ पर कार्य किया जाता है। तो उसका भी ये बिंदु हो जाता है कि सार लेखन हमारे सरकारी कार्यालयों में भी बहुत अधिक उपयोगी रहता है। तो यहाँ तक हमारी बात स्पष्ट हो गई है, सार लेखन का क्या अर्थ है, सार का क्या अर्थ है और सार लेखन की उपयोगिता क्या है। अब हम बात करते हैं सार लेखन क्या है और भाव पल्लवन क्या है और इनमें अंतर क्या है। हमने सार लेखन के बारे में जान लिया है, बहुत इसको आप बिल्कुल कह सकते हैं सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। सार लेखन के लिए हमारे पास बहुत विस्तृत सामग्री है, बहुत बड़ी सामग्री, बहुत ज़्यादा है हमारे पास सामग्री, लेकिन उस सामग्री को हमें बिल्कुल कम करके उसे प्रस्तुत करना है, यानी कुछ भी अनुपयोगी, कुछ भी कम उपयोगी बिंदुओं को हम छोड़ देते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम समेटते हुए उसका सार करते हैं, तो निरंतर उसका आकार जो है उस सामग्री का कम होता चला जाता है, बिल्कुल घटता चला जाता है। इस तरह से सार लेखन किया जाता है। और जो भाव पल्लवन है उसका क्या अर्थ है कि जो आपको सामग्री दी है वो बहुत ही संक्षिप्त होती है। मान लीजिए कि आपको कोई किसी महान व्यक्ति का विचार दिया है, अहिंसा ही परम धर्म है, आपको ये एक उद्धरण, आपको एक ये सूक्ति बताई गई है और इसका भाव पल्लवन आपको करना है। अब अहिंसा जो शब्द है इस भाव में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं जिन्हें आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इस बिंदु पर आप किस तरह से अपने विचार रखेंगे तो आप बहुत एक वाक्यांश भी कह सकते हैं, आप बिल्कुल एक वाक्य के बारे में आप विस्तार से अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, संक्षेप में सामग्री है हमारी और उसे हम फैलाते हैं, पल्लवन बिल्कुल फैला रहे हैं उसमें बहुत सारे। अब आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है, आप जब अहिंसा की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र इसमें आएगा, और जब स्वतंत्रता आंदोलन का आएगा तो आप कितनी सारी बातें यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से आप महात्मा गांधी जी से शुरू करते हुए आप कितनी सारे इसमें विचार रखेंगे अपने आज के संदर्भ में, अहिंसा का की कितनी उपयोगिता है और कितनी अधिक प्रासंगिकता है इसके बारे में, यानी बहुत सारे आप अपने दृष्टिकोण से आप इस विचार पर क्या क्या लिखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपने अपने विचारों को एक वाक्य पर आधारित करके उनको अभिव्यक्त किया, यानी फैलाया। तो जो आपका अंत निष्कर्ष जब निकलता है, जो पूरा जो सामग्री तैयार होती है वो बहुत बड़ी सामग्री, एक वाक्य से इतनी अधिक सामग्री। और यहाँ पर क्या है, सार लेखन में बहुत अधिक सामग्री और अंत में बिल्कुल थोड़ी सी सामग्री जो मुख्य मुख्य बातें हैं। तो इस तरह से ये सार लेखन और भाव पल्लवन अपने आप में एक दूसरे के पूरी तरह से विपरीत आप कह सकते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत होती हैं। तो आप यहाँ पर इस बारे में भली भांति समझ गए होंगे कि सार लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है। तो अगर यहाँ आपसे कोई पूछे, और ये नहीं तो परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, तो आप इसका उत्तर इसी तरह से उदाहरण के साथ आप दे सकते हैं। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में सार लेखन की क्या उपयोगिता होती है और अलग अलग विषयों में किस तरह से सार लेखन काम में आता है। तो इसमें हम कुछ बिंदुओं पर और जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम देखते हैं कि सामग्री बहुत अधिक है और हमें उसको संक्षेप में प्रस्तुत करना है तो हम कई प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ अनावश्यक शब्द तो नहीं है, कुछ ऐसे शब्द जिन्हें अगर हटा देंगे तो उसके अर्थ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम वे अनावश्यक जो विस्तार है हम उसे हटा देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी बात को विस्तार से जो कहा गया है उसे हम एक शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हिंदी में हम उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, जिसे जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि बहुत बोलने वाला, तो उसे हम वाचाल कहते हैं, बातूनी कहते हैं। तो इस तरह से हम तीन शब्दों को हम एक में ही समेट देते हैं, तो इस तरह से भी हम अपने शब्दों की पहचान करते हैं जिन्हें हम इस तरह से संक्षिप्त रूप दे सकें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लिख सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि किसी भी बात को अलग अलग ढंग से दोहराया तो नहीं गया है, अगर इस तरह से दोहराया जा रहा है तो हम वे वाक्य भी हटा देते हैं, उसे बस एक बार ही हम उसे रखते हैं और उसे हम हटा देते हैं। तो अगर बहुत लंबे वाक्य हैं उन्हें भी हम बहुत ही संक्षिप्त कर देते हैं, मुख्य भाव को रखते हैं और बाकी हम शब्दों को हटा देते हैं, तो इस तरह से भी हम अपनी बात को संक्षिप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा हम सबसे पहले जब हम इन सब बातों की पहचान करते हैं, इन सब शब्दों को हम देखते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इस लेख के, इस अनुच्छेद के जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन से हैं, हम उन मुख्य बिंदुओं को भी लिख लेते हैं। और हम इस बात पर ध्यान रखते हैं कि जब हम सार लिखेंगे तो ये जो मुख्य बिंदु हैं हमारे सार लेखन में अवश्य शामिल रहेंगे, तो इस तरह से भी हम सार लिखते हैं। तो आप जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आप बात करते हैं तो हमारी जो पाठ्य सामग्री है, हमारी जो अध्ययन सामग्री है एनआईएस की माध्यमिक स्तर की हिंदी विषय की जो सामग्री है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं और आप इन्हें परीक्षा की दृष्टि से भी इसे इन पर ध्यान दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा जो और अन्य उदाहरण हैं उन्हें भी आप पढ़िए ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि हिंदी भाषा में कितनी सारी अभिव्यक्तियां हैं, कितने सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी अभिव्यक्ति को संक्षेप में आप कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे जो कम खर्च करता है मितव्ययी कहलाता है, जिस पर कोई विवाद नहीं होता है, ना हो तो वो निर्विवाद है। तो आप इसे जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप सही ढंग से ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जब प्रयोग करें तो आप सही शब्द का ही प्रयोग करें, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो इस बारे में भी मेरा सुझाव ये होगा कि आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप किसी यहाँ हमारी सामग्री से भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा भी आपको पास बहुत सारे स्रोत होंगे जहाँ से आप और उदाहरण भी देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। तो शिक्षार्थियों अब हम बात करेंगे कि सार लिखा कैसे जाए। अभी हमने मुख्य बातें जान ली हैं, उसके रूप क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाता है, मुख्य बिंदु हमने जान लिए हैं। अब देखते हैं कि सार लिखा कैसे जाता है। तो सार लिखने में हम सबसे पहले जो हमारी सामग्री है, मान लीजिए कि एक अनुच्छेद आपको दिया गया है और आपने वह अनुच्छेद जो है पढ़ लिया है, एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसे फिर से पढ़ते हैं, दो बार समझ में नहीं आया है तो आप उसे तीसरी बार पढ़ते हैं। तो आप जब आपको यह निश्चित हो जाए कि अब मुझे यह अनुच्छेद समझ में आ गया है कि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है, उसने क्या लिखा है, जब आपको ये समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर उसका जो मूल बिंदु है उसे आप समझ गए हैं, वो कि लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो आप मूल बिंदु को वहाँ पर रेखांकित कर लेंगे, आप लिख लेंगे कि इसका मूल बिंदु क्या है। अब ये तो हुआ मूल बिंदु, लेकिन इसके अलावा इस मूल बिंदु को और अच्छे ढंग से स्पष्ट करने वाले जो संबंधित बिंदु हैं वे कौन से हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखेंगे कि वो जो संबंधित बिंदु हैं आप उनकी भी पहचान करेंगे। और संबंधित बिंदुओं की जब आप पहचान करेंगे तो उसके बाद आप उसको एक क्रम में रख लेंगे, तो उस क्रम का भी आपको ध्यान रखना है, वो क्रम सही होना चाहिए और तभी आपका जो सार है वो उसमें वो सार्थक रहेगा, तभी उसका कुछ अर्थ होगा। नहीं तो आप जिस उद्देश्य से ये सार लिखेंगे उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्रम का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको ये बात भी बहुत अच्छे ढंग से समझनी होगी शिक्षार्थियों की जो अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं, जिसका सार आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक ही बात की कई बार व्याख्या उसने किस रूप में की है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बात को कहकर, एक बात को लिखकर उसे अलग अलग ढंग से स्पष्ट करने का, उसकी व्याख्या करने का प्रयास लेखक करता है, तो आपको वो भी रेखांकित करना होगा कि कहाँ पर उसने एक ही बिंदु का की व्याख्या की है, उसे विस्तार दिया है, या आप इसे यहाँ पे कह सकते हैं कि उसका भाव पल्लवन किया है, तो आपको उस भाव पल्लवन को हटाना है। एक बार आपने वहाँ पर देखा कि ये इस गद्यांश में ये बात जो है, ये बिंदु जो है यहाँ पर शामिल हो गया है, जो उसकी बहुत अधिक जो व्याख्या की गई है, बहुत अधिक जो विस्तार है, उसे आपको हटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने मूल बिंदु को पहचान लिया है, उसके संबंधित बिंदु आपने पहचान लिए हैं, और साथ में आपने ये भी देख लिया है कि कहाँ पर व्याख्या की गई है, कहाँ पर लेखक ने उदाहरण दे देकर अपनी बात को पुष्ट किया है। हम उदाहरण के माध्यम से भी बार बार बताते हैं, तो वे उदाहरण जो हैं वे भी अनावश्यक विस्तार यहाँ पर प्रदान करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी है कि एक ही बात को अलग अलग ढंग से दोहराया जा रहा है, तो वो दोहराव जो हो रहा है उसे भी आपको रेखांकित करना है। तो ये जितने भी बिंदु हैं, ये जितनी भी बातें हैं, ये हमारे काम की नहीं है। हम अगर व्याख्या देख रहे हैं तो उसे हम रेखांकित करेंगे क्योंकि हमें ये हटानी है। अगर उदाहरण बहुत अधिक देकर यहाँ पर विस्तार दिया जाता है तो हमें वे उदाहरण भी हटाने, तो हमें वो भी रेखांकित करने। एक ही बात को दोहराया जा रहा है तो वहाँ पर ये भी आप वहाँ लिखते हुए हटाएंगे। तो इस तरह से हम सार लेखन जो है वो सीखते हैं। तो इसमें आप उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं शिक्षार्थियों, और इसमें आप हमारे अध्ययन सामग्री में यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि हम किस तरह से, जो अभी आपको मैंने बातें बताई हैं कि हमें व्याख्या को हटाना है, हमें उदाहरणों को हटाना है, हमें दोहराव को हटाना है, तो हम किस तरह से हम उसे हटाते हुए हम अपना जो सार है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए इसे पढ़ सकती हूँ। ये उदाहरण कुछ इस तरह से है कि भारत का काव्य रूपी आकाशमंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त कांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़कर है। वे इस आकाशमंडल के असंख्य तारों के बीच मध्यान्हकालीन प्रचंड मारतंड के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं, और क्यों न दें। ये कोरे कवि नहीं थे, वरन वे ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, गंभीर तत्वों को सरल सरस शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। तो यहाँ पर आप इस गद्यांश को, आप इस अनुच्छेद को आप एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ लीजिए। जब आप इसे कई बार पढ़ेंगे तो आप भली भांति समझेंगे कि इसमें कवि तुलसीदास की प्रशंसा की गई है और उनका जो महत्व है हिंदी साहित्य में उसे दर्शाया गया है। ये हमारा मूल भाव है। अब इस मूल भाव को पुष्ट करने वाले कुछ और बिंदु भी हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारे श्रेष्ठ कवि हैं और जो तुलसीदास हैं वे सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, और ये तुलसीदास जो हैं वो सिर्फ कवि नहीं हैं, वे चरित्रवान भी हैं, राम भक्त भी हैं, दार्शनिक भी हैं, और इस तरह से वे उपदेशक भी हैं और भविष्य दृष्टा भी हैं। तो ये हमारे संबंधित बिंदु हो गए हैं, और इसके बाद आपको रेखांकित करना है कि इसमें, इस अनुच्छेद में कौन से अंश हैं जो व्याख्या के अंतर्गत शामिल होंगे, या उदाहरण के अंतर्गत शामिल होंगे, या दोहराव की कोटि में आएंगे। तो आप जैसे उनकी जो प्रशंसा की गई है, तुलसी का तेज काव्य रूपी आकाशमंडल में सर्वाधिक बढ़ चढ़कर है, इस तरीके की ये जितने भी बिंदु हैं आप इसे हटा देंगे। और शेक्सपियर का जैसे उदाहरण दिया हुआ है और बताया है कि वे अद्वितीय चरित्र वाले थे, ये इसी भाव की व्याख्या करते हैं, तो इन सब बातों को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, फिर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह से एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए लेखक ने महाकवि तुलसीदास जी की महिमा का वर्णन किया है। तो जब हमने ये सब व्याख्याएं, हमने जब सब काट छांट दी और मुख्य बिंदु को हमने रखा, मूल भाव को हमने रखा, तब उसका जो सार है वो इस तरह से आया कि भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं, पर तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कोरे कवि ही नहीं बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बनाने वाले उपदेश बताने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा अनुच्छेद था, और उसे हमने, उसकी अनावश्यक जो व्याख्या थी, दोहराव थे, उदाहरण थे, उनको हटाकर हमने बहुत ही सामान्य सी, सरल सी भाषा में उसे यहाँ पर संक्षेप करके, उसका सार करके हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से इन्हीं चरणों से गुजरते हुए आप किसी भी सामग्री का सार जो है वो लिख सकते हैं। तो इसमें हमारी सामग्री में इसमें कुछ और उदाहरण भी दिए हुए हैं, आप उनका अभ्यास भी इसी प्रक्रिया से कर सकते हैं। अब शिक्षार्थियों, हम बात करते हैं सरकारी कार्यालयों में सार लेखन की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं समझती हूँ कि हम सभी को अच्छी तरह से जानना चाहिए। हमने अपने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया था कि सरकारी कार्यालयों में बहुत सारा पत्राचार होता है, जनता अलग अलग कार्यालयों को अपने 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 दृष्टिकोण से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो पत्र लिखती है, और अलग अलग कार्यालय भी एक दूसरे को आपस में पत्र लिखते हैं। तो ये जब पत्र हैं, इनकी सूचना जब उच्चतर अधिकारी को दी जाती है और इस पर आदेश के लिए, कार्रवाई के लिए आदेश लेना होता है, तो इसे फाइल में लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। और जब इस पत्र को संलग्न किया जाता है तो जो टिप्पणी है उस टिप्पणी में पत्र के बारे में लिखा जाता है कि इस दिनांक का इस कार्यालय से इस दिनांक का यह पत्र प्राप्त हुआ जिसका विषय यह है, और इसके मुख्य बिंदु फिर हम लिखते हैं कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से विस्तृत सामग्री को हमने काट छांट के उसका सार लिखा है, उसी तरह से जो पत्र कार्यालयों में प्राप्त होते हैं उनका भी सार करके ही वो फाइल पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों में भी बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाती है, और इस सार लेखन की का प्रयोग अगर नहीं किया जाएगा तो आप देखिए कि कितना अधिक सरकारी जो समय है वो नष्ट होगा। तो सार लेखन इतना अधिक उपयोगी है हमारे जीवन में, हमारे सरकारी कामकाज में। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये हमारा कार्यक्रम था जिसमें हमने बात की सार लेखन पर, सार लेखन का क्या अर्थ है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या रूप हैं और क्या मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए सार लेखन करते हुए। और जब इन सब बातों को हमने जान लिया तब हमने जाना कि सार लेखन की प्रक्रिया क्या रहती है। तो आपके आपके इस पाठ्यक्रम में जिस तरह से ये पाठ रखा गया है, मैं समझती हूँ कि लेखन कौशल के अंतर्गत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है हमारा, जिस पर आपको बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए ताकि आप परीक्षा में तो खैर अच्छे अंक आप ले ही लेंगे, लेकिन ये सार लेखन का जो अभ्यास है आपके अपने जीवन में भी बहुत अधिक उपयोगी होने वाला है। तो इस तरह से आप शिक्षार्थियों इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप अपना काम करते हुए समय की बचत करेंगे, और जहाँ भी आप मौखिक रूप से भी अपनी बात कहते हैं तो आप संक्षेप में अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, ध्यान से सुनी जाएगी, उस पर बल्कि कार्य भी किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका और सुनने वाले का, दोनों का जो समय है उसकी बचत होगी। और सबसे कीमती आज के समय में क्या है? समय, क्योंकि समय ही किसी के पास नहीं है, सब लोग बहुत अधिक व्यस्त हैं। तो हम सभी को अपने समय को सही ढंग से उपयोग करना है तो उसके लिए सार लेखन बहुत अधिक उपयोगी कौशल है जिसका हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों, मैं समझती हूँ कि यहाँ ये हमारा पाठ जो है वो पूरा हो गया है, और हम अपने अगले कार्यक्रम में अपने इस पाठ्यक्रम का अगला जो पाठ है वो भी बहुत ही रोचक है, एक कविता है ये, और इस कविता का शीर्षक है इसे जगाओ। बहुत आसान सी दिखने वाली ये कविता जो है इसमें बहुत ही गहरा अर्थ समाया हुआ है। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप अगली बार हमारी कक्षा में आते हुए ये कविता आप अवश्य पढ़कर आइए ताकि आपको इस चर्चा से अधिकाधिक लाभ हो सके। धन्यवाद।